نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير مسن انسانیت. اس میں سے ہم مدنی دور میں سے مسلمانوں کے وہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ ہوئے, خاص طور پہ اس میں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی دولت میں کمزور رکھا تھا, تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو کس کس طرح سے ٹارچر کرنا چاہا. کتاب کا پیج ہے 283, بالکل شروع سے اوپر ہم ایک واقعہ پڑھیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ اس دور میں مسلمانوں کے حالات کیا تھے. آئیے پڑھتے ہیں. زید بن سنہ کا دلچسپ واقعہ ان حالات پر مزید روشنی ڈالتا ہے. یہ یہودی عالم تھے, دیانتداری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کا جائزہ مختلف علامات کی روشنی میں لے رہے تھے. ان کا بیان ہے, یہاں سے آپ نوٹ کریں نا, کہ جب نئی نئی دعوت کہیں آتی ہے نا, لوگ ایک خاص دین کے عادی ہوتے ہیں, رسم و رواج سے بھرا ہوا اور طور طریقے باپ دادا کے. اب اس سوسائٹی میں کوئی ایک شخص اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے آ جاتا ہے تو لوگ دو طرح کے حصوں میں بٹ جاتے ہیں. کچھ تو اس کو بلائنڈلی انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ باپ دادا کے طریقوں سے دور ہے, یہ تم نے کبھی سنا نہیں, یہ دیکھا نہیں. لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, جو عقل استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چلو سن کے دیکھتے ہیں. تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ خود بخود اس چیز کی گواہ ہوتی ہیں کہ ایک انسان کیا کہتا ہے. تو یہاں اب آپ دیکھیے کہ جو اچھے لوگ تھے اللہ نے ان کو کیسے اسلام کی دولت دی. یہی واقعہ, یہ کہتے ہیں کہ ایک بدو تھا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی سے کیا کہا. اس نے بیان کیا کہ میری قوم مسلمان ہو چکی ہے, میں نے ان کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا اگر تم اسلام لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھرپور رزق دے گا, لیکن بدقسمتی سے الٹا قحط پڑ گیا. اب اگر ان کو سہارا نہ بہم پہنچایا جائے تو اندیشہ ہے کہ وہ اسلام سے دور ہو جائیں گے یا بدگمان ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. انہوں نے عرض کیا کہ فی الوقت کچھ بھی موجود نہیں. زید بن سانہ نے پیشکش کی کہ مجھ سے 80 یعنی 80 مثقال سونا لے لے اور اس کے عوض میں وقت معین پر کھجوریں دے دیں. معاملہ طے ہو گیا, اللہ کے نبی نے سونا لے کر بدوی کے حوالے کر دیا. زید بن سانہ کا بیان ہے کہ مقررہ میعاد میں جب 2-3 دن باقی رہ گئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عالم میں دوچار ہوئے کہ آپ اپنے چند ساتھیوں کے سمیت ایک جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے پاس تشریف فرما تھے. زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلووں کو کھینچتے ہوئے انتہائی سختی سے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا قرضہ ادا نہیں کرتے, خدا کی قسم میں تم سب اولاد عبد المطلب کو خوب جانتا ہوں کہ پکے نا دہند ہو, یعنی پیسہ لے کر واپس نہیں کرتے. حضرت عمر نے زید کو گرم نگاہوں سے گھورا اور کہا کہ وہ خدا کے دشمن کیا بولتا ہے, خدا کی قسم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا, یعنی تو توہین رسالت کر رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بدتمیزی اور گستاخی کے ساتھ پیش آ رہا ہے. سرور عالم نے حضرت عمر کو سمجھایا کہ ایسے موقع پر آپ کو چاہیے تھا کہ ایک طرف مجھے حسن خوبی سے ادائے قرض کی تلقین کرتے, دوسری طرف اس شخص کو مطالبہ کرنے کے بہتر طریقے کی نصیحت کرتے. پھر فرمایا, اب جاؤ اور جا کر اس کا حساب ادا کرو, اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 سا مدینہ کے ایک معروف پیمانہ تھا کھجورے مزید دے دو. یہ دراصل زید بن سنہ کی طرف سے صاحب نبوت کا آخری امتحان تھا. حضرت عمر سے اپنا تعارف کرایا اور ان کو گواہ بنا کر اسلام قبول کیا اور اپنا آدھا مال ملت اسلامیہ پر صدقہ کر دیا. یہ زید یہودی مہاجنوں کی سب سے بالکل الگ اپنا مقام بلند رکھتے تھے, لیکن ان کے واقعے سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مدینہ میں تحریک اور ان کے افراد کی مالی مشکلات کس درجے کی تھی, اور ان کے زیر اثر آئے دن قرض اٹھانا پڑتا تھا اور قرض خواہوں کی طرف سے سختیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں. آپ کے معاملے کو سمجھیں, یعنی جب جہالت ہوتی ہے نا تو وقت کا نبی بھی لوگوں کے بیچ میں آ جائے تو لوگ اس کی ویلیو کو نہیں پہچانتے کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی. اب آپ سوچیے کہ ایک طریقہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی اس سے الجھتے, بات کرتے, فتنہ بنتا, لیکن کیا تھا, پھر اس کو اسلام نہیں ملتا. تو ہمیشہ تحمل سے, برداشت سے, دوسرے پرسن کی حیثیت کو محسوس کرتے سمجھتے جب معاملہ کیا جائے تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں خیر دیتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے اس کے بعد, یعنی آج کل ہم جو واقعات پڑھے نا سب کا تعلق مال سے ہے. آج اب دیکھیں کہ لوگ بہت جلدی دین سے متنفر ہوتے ہیں جب مال پہ چوٹ پڑتی ہے. یعنی ہم دین کی طرف آئیں اور ہمیں مال ملے یا ہمیں خیر ملے یا ہمیں کسی نہ کسی قسم کا فائدہ ملے, ہم کہتے ہیں یہ دین اچھا ہوگا, लेकिन जूं ही जरा माल के ऊपर जद पड़े तो बस लोग कहते हैं ये दीन ही नहीं अच्छा। तो ये क्यों आती है मुश्किलात दीन के तरफ आने के बाद, कि अल्लाह ताला देख रहे होते हैं कि आप कितने सच्चे हैं। आप देखें ना, आपने कोई चीज़ खरीदनी और आपके दिल में है कि मैंने लेना है, लेकिन वो चीज़ महंगी है, उसकी कीमत देनी है, तो अगर आप संजीदा होंगे ना, तब किसी ना किसी तरह से ले लेंगे। अगर आप वो चीज़ खरीदने के मामले में संजीदा है, आप कोई चीज़ भाव ताव करेंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ खरीदेंगे, आप कहेंगे कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। लेकिन अगर आप डबल माइंडेड होंगे, आप कहेंगे छोड़ो इतनी महंगी है मैं नहीं लेती। बिल्कुल यही चीज़ है, जब हमें दीन की वैल्यू समझ आ जाती है ना, तो फिर हम हर कीमत पे लेना चाहते हैं। इसके बरक्स आप देख लीजिए, वही होता है कि लोग जरा सी दीन के लिए को कुर्बानी देनी पड़े, किसी किस्म की कुर्बानी, बाज दफा माली होती है, बाज दफा कुछ और होती है, लेकिन लोग जो उसके बाद पीछे भागने लगते हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह कभी मेरे दीन पे आजमाइश ना आए, और अगर आए तो मुझे साबित कदम रखना, ऐसा ना हो कि मैं किसी जाती मुफाद की खातिर इतने प्यारे दीन को छोड़ दूं। तो बहरहाल यहूद और मालदार मुशरिकीन ने एक तरफ तो महाजनी, महाजनी सूद पे काम करने वालों को कहते हैं, महाजनी महाजे तहरीक इस्लामी के खिलाफ खोल रखा था। दूसरी तरफ वो एक और मुहिम में भी मसरूफ थे, वो ये थी कि लोगों को इन्फाक फी सबीलिल्लाह से रोका जाए। ये भी बड़ी अहम बात है। सच्चे ईमान वाले जिनका दिल खुल जाता है वो इस्लाम पे खर्च करना चाहते हैं, और जिनके दिल खुले नहीं होते वो खर्च करने वालों को भी कहते हैं आप क्यों इतना करते हैं। भला वो ये क्यों कहेंगे कि फिर हमारा ना चुभे। देखे ना, जैसे कोई भी ना करे तो आप भी नहीं करेंगे, तो सब एक जैसे होंगे। अब कोई एक ही कर रहा है या दो कर रहे हैं या चंद लोग बार बार नेकी करते हैं, तो जो नहीं कर रहे होते ना, उनको एक गिल्ट फील होता है, थ्रेट होता है, हाय अब हमारा भी लोगों को पता चल रहा है हम नहीं कर रहे, तो फिर वो बहाने बहाने से जाकर उनको क्या करते थे कि मना करे, नहीं ना अब इतना भी तो नहीं है ना, अब सारा कुछ दीन को दे देंगे तो फिर क्या होगा, और देखो ना अब इनको तो फिर जितना भी दें तो ये कमी है, दीन के तो जरूरतें कभी पूरी नहीं हुई। एक ये नुकसान। दूसरा क्या होता था, वो क्यों दूसरों को रोकते थे माल खर्च करने से, ताकि तहरीक माली कमजोरी की वजह से सूख सूख कर खत्म हो जाए। जाहिर बात है, दुनिया का कोई का माल के बगैर तो होता नहीं है। आप बताएं, एक वक्त का खाना नहीं पकता, आपकी गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो आप कैसे चलाएंगे। वो कहते हैं कि दीन पे खर्च ना करो तो दीन अफोर्ड ही ना कर सके किसी चीज को, तो बर्दाश्त हो। अफसोस की बात है, ये जो सदी जा रही है और पिछली गई है और ये आ रही है, इसमें इस्लाम के साथ यही हुआ कि हमने इस्लाम को सिर्फ अपना वो बच्चा खुचा दिया, और जो पुरानी खराब चीजें पकड़ के इस्लाम के खाते में डाल दो, कुर्सी टूट गई है मस्जिद में छोड़ो, और कपड़े फट गए हैं तो ये मौलवी साहब को दे दो। नुकसान क्या हुआ कि फिर दीन उस स्टैंडर्ड का नहीं बना। आज आप देखिए कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हजारों के कर्जे दे के आपके बच्चे पढ़ते हैं ना, लेके कर्जे पढ़ते हैं या दे के पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं। कौन है जो रोकता है बच्चों को यूनिवर्सिटियों में जाने से। लेकिन दीन पे खर्च करना बड़े छोटी छोटी बात पे आएंगे, लोग कहेंगे इससे मिलना क्या है। तो यही मकसद था उन लोगों का कि लोगों को माल खर्च करने से रोका जाए, ताकि दीन जो है वो सर्वाइव ही ना कर सके, और जिसको अपनी जबान में वो कहते हैं कि बैंकरप्सी फाइल हो और ये सारी तहरीक खत्म हो जाए। इस मकसद के लिए एक तो वो तरगीब इन्फाक की आयत का मजाक उड़ाते थे, यानी वो आयतें जिसमें रगबत दिलाई जाती थी कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, उसका मजाक उड़ाते कि लो जी मुसलमानों का खुदा भी दिवालिया होकर कर्ज मांगने निकल खड़ा हुआ। सुनिए ये आयत, पढ़ चुके हैं। क्या कहा था फिनहास ने कि नऊज़ु बिल्लाह इन अल्लाह फकीरुन व नहनु अग्निया, कि मुसलमानों तुम्हारा अल्लाह फकीर है जो हमसे माल मांगता है। तो ये बहुत बड़ी जुरत की बात थी। कभी कहते इस इस्लामी तहरीक के खुदा का हाथ बंद है, ये भी आयत है कुरान में, कहते थे अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, तो अल्लाह ने कहा अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं, तुम्हारे बंधे हुए हैं। ये बातें यहूदियों से चलकर मुनाफिकीन की जुबानों पर चढ़ जाती और पूरी फिजा को गुबार आलूद कर देती। ये जुमला जरूर नोट करें, यहूद सिर्फ जहनों में डालते थे। यहूद की हिस्ट्री में है कि वो हमेशा बैक पे रहकर काम करते थे, बोलते थे ये बातें मुनाफिकीन, लेकिन पीछे से मैसेजिंग उधर से आती थी। अक्लमंद लोग ऐसे ही करते हैं, वो डायरेक्ट आकर बुरे नहीं बनते, यानी लोगों के जहनों में ऐसी बातें करते, साजिशें करते, लेकिन मुनाफिकीन फिर उन बातों को खोल के आगे लेके चलते। दूसरी तरफ वो इन्फाक करने वालों से मिल मिल कर कहते कि देखो क्यों अपना माल गारत कर रहे हो, मक्का के चंद कंगालों को खिला पिला कर तुम क्या हासिल करोगे, अपने बाल बच्चों की खिदमत करो, कारोबार चलाओ, आखिर माल का ये क्या कमाना मसरफ तुमने ढूंढा है। मसरफ क्या, इस्तेमाल। इस मुहिम को चलाने वाले यहूदियों और मुनाफिकीन ही के बारे में कुरान ने कहा या मुरूनन ना सबिल बुखली, यानी ये लोगों को कंजूसी की तालीम देते हैं, इन मौल्लिमीन, मौल्लिमीन कहते हैं उस्ताद, इल्म देने वाले, यानी इन बुखल सिखाने वालों में कुर्दम बिन कैस काब बिन अशरफ का हलीफ था ये शख्स, उसामा बिन हबीब, नाफे बिन अबी नाफे, बहरी बिन अमर, हुई बिन अख्तब और रुफाया बिन जैद बिन ताबूत नामूर और सरबर आवुर्दा हजरात, यानी ये बड़े बड़े उनके सरदार थे। ये अंसार के पास आकर बैठते, इनसे नासिहाना अंदाज में कहते, यानी देखिए कि उनकी सिंपथीज लेते थे, नसीहत करते, देखो हम तुम्हारे सिंसियर हैं, वी आर योर वेल विशर। क्या कहते, अपने माल यूं ना उड़ाओ, ये यूं जाएगा तो हमें तुम्हारे मफलूकुल हाल हो जाने का अंदेशा है, सो तुम तहरीक इस्लामी पर खर्च करने में इतनी तेजी ना दिखाओ, तुम्हें कुछ सुदबुत नहीं कि हालात क्या हो जाएंगे। यहूद के पांचवें कालम के कारिंदों, यानी यहूद के मतलब इस काम के करने वालों में ये सरगोशियां होती थीं कि रसूलुल्लाह के साथियों पर माल खर्च करने से बाज आ जाओ ताकि ये छट जाए। ये वाकया भी कुरान पाक में आता है और ये अब्दुल्ला बिन उमई ने कहा था, सूरत मुनाफिकून की आयत 7 में इसका तस्कर आता है, कहते थे ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे तो ख़त्म हो जाएगा सारा मामला। कितनी दूर अंदेशाना स्कीम थी, यानी कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते थे ये इस काम के लिए, यानी एक तरफ से जज्बा इन्फाक के सरचश्मे को बंद किया जाए और दूसरी तरफ महाजन बनकर, यानी सूद के लेन देन करने वाले बनकर अपनी शायला के पंजे की गिरफ्तारी। शायला की पंजा कहते हैं, यानी एक उनका जो थ्रेट होल्ड था, थ्रेश होल्ड था, या एक उन्होंने एक अपनी मोनोपोली कर ली थी कि जी पैसा सारा हमारे ही थ्रू होगा। जैसे आज मिसाल है कि बैंक है ना, आप देखिए कि बैंकों के थ्रू ही सारे प्रोसेस चलते हैं ना, घर खरीदना है तो बैंक को इन्वॉल्व करते हैं, लेना है तो करते हैं, गाड़ी लेनी है। तो यहूद ने मदीना की इकोनॉमी जो थी ना उस पर अपना होल्ड रखा हुआ था, यही बात है इधर हो रही। स्कीम कामयाब हो जाती तो ईमान और इस्तदलार और अमल और किरदार के मैदान में मुकाबला किए बगैर सर पर मुंडलाते हुए इनकलाब को शिकस्त दी जा सकती थी, मगर मामला एक खुदाए दाना बीना एक हक में कादिर और तवाना से था। इसकी गहरी तदाबीर ने दुश्मनान हक की चालों को शिकस्त दे दी। मसलन बाद के दौर में जबकि ज़कात का निज़ाम वसूलो सर्फ बाज़ाब्ता तौर पर कायम हो गया, यानी जब ज़कात के लेने देने की सारी चीज़ें जो थी वो अपने हिसाब से ठीक हो गई थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक घटिया इल्ज़ाम ये भी लगा दिया था कि आप बैतुल माल में आने वाले सदकात को मन माने तरीके से उड़ा देते हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा इल्ज़ाम है एक नबी पे, कहते थे आप दीन के लिए माल जमा करते हैं फिर अपनी मर्जी से जहां दिल करता खर्च कर देते हैं। ये एक आम इंसान को भी अगर ऐसी कोई बात कहे तो ये सजती नहीं है। किसी मस्जिद के मौलवी साहब को लोग कह दें, मौलवी साहब जुम्मे को जो आप सारा चंदा लेते हैं पता नहीं आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं या आप घर ही ले जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो उनकी भी शान के खिलाफ है। लेकिन कहाँ आप देखिए कि लोग नबी सल्लम पर ये बात करें, और ये भी कुरान में आयतें मौजूद हैं, कहते थे आप सदके के मामले में अपनी बातें करते हैं, ये सूरह तौबा में आएगा, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो खैर नबी सल्लम के ऊपर इल्ज़ाम लगा। सूरत वाकया ये थी कि तमाम अंदोख्तों और कारोबारी सरमाए और मवाशी और ज़राई पैदावार में से जब बाज़ाब्ता अल्लाह के हाजतमंद बंदों का हक लिया जाने लगा तो ढेरों दौलत एक मरकज़ पर सिमटने और नबी सल्लम के मुबारक हाथों से बारान रहमत की तरह तकसीम होने लगी। मुराद ये कि जब इस्लाम का चैरिटी का निज़ाम ज़कात का और सदकात का आम हुआ तो दुनिया में गुर्बत रही नहीं, सभी के पास दौलत चली गई। दौलत की इस बहती गंगा को देखकर दौलत से मोहब्बत करने वालों के मुंह में पानी भर आता और वो चाहते थे कि जाहली दौर की तरह आज भी इस गंगा से वही हाथ रंगे जो पहले से मजबूत माली हैसियत के मालिक हैं। लेकिन इस्लामी तहरीक के कायम करदा निज़ाम मईशत ने दौलत के बहाव का रुख गरीब तबकों की तरफ फेर दिया था और अरबाब जाहोशमत यानी स्टेटस रखने वाले और जिनके पास दौलत थी वो इस इनकलाब पर कुड़ते थे। वो फी नफसी ही इस्लामी निज़ाम मईशत पर तो हमला नहीं कर सकते थे जो इनकी जेबें भारी करने की बजाय उल्टा इन पर बजोरे कानून ज़कात का जुर्माना वसूल कर रहा था। ऐसे ही कि जैसे इस्लाम आता है ना तो गरीब खुश होंगे क्योंकि उनको आसानी मिलेगी। इस्लाम का निज़ाम इतना प्यारा, खासतौर पर दौलत का निज़ाम इतना लुब्रिकेटिंग है कि बड़े से छोटे को, छोटे से छोटे को मिलता है, हर बंदा कम अज़ कम बेसिक्स का कफील हो जाता है, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये इस्लाम की खूबी है। लेकिन जो लोग दौलत पसंद होते हैं, जो सूद पे लोगों को लेन देन करते हैं, जो बड़े बड़े अपने हाथ में सारा कुछ रखना चाहते हैं, वो नाराज़ होते हैं। क्यों? कि फिर गरीब उनके पास नहीं आते, उनकी तो ज़रूरतें पूरी हो गई। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि उनको तो ज़कात देनी भी एक किस्म का जुर्माना लगता था, बस दिल का बुखार निकालने के लिए मुस्ने इंसानियत को निशाना बना लेते। इनका ये कहना था कि दौलत अपने हामियों और अपने चहीतों में खर्च की जा रही है और मुहाजरीन को ख़ास तौर पर नवाजा जा रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में खुदाई खजाने के बल पर दोस्त नवाजी और कुंबा परवरी हो रही है। मुतफरिक गुफ्तगुओं में मसाला लगा लगा कर कहा जाता होगा, आम लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई खुदा के नाम पर निचोड़ी जाती है, लेकिन इसे अपनी धाक बढ़ाने और अपना इकतदार मुसल्लत करने के लिए बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है। पब्लिक फंड्स के बारे में किसी भी निज़ाम में क़यादत पर इल्ज़ाम लग जाए तो संगीन होता है, लेकिन ख़ास तौर पर एक दीनी और अखलाकी निज़ाम मुआशरे में जहाँ ख़जाना अल्लाह का माल कहलाता हो और जिसका हर आमदो सर्फ अल्लाह के नाम से और इसके अहकाम के तहत किया जाता हो, वहाँ ऐसे इल्ज़ाम से शदीद जज्बाती हिजान पैदा किया जा सकता है। गौर फरमाइए, ये इल्ज़ाम नमूने की इस शख्सियत पर चिपका जा रहा था जिसने सदके की आमदनी को खुद अपने और अपने अहलो याल के लिए नहीं पूरे ख़ानदान बनी हाशिम के लिए बमंजिला हराम के करार दे लिया था। ये शान बेलौसी की कोई मिसाल तारीख में मुश्किल से ही मिलेगी। इसके बुराक दामन पर भी नहायत अदना सीरत के लोगों ने उठकर धब्बे डाल दिए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के ऊपर भी मतलब एक हद कर दी। तो अब सारी बात का खुलासा समझ आ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा निज़ाम जब मदीना में आम हुआ तो वो लोग परेशान हो गए जिन्होंने इससे पहले गरीबों का खून निचोड़ना था। नतीजतन उन्होंने क्या किया कि लोगों के को इस्लाम माल खर्च करने से रोका। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे इल्ज़ाम लगाए कि ये इज्तमाई माल को ज़ाती फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरी बात ये थी कि वो चाहते क्या थे कि कुरान पाक की वो आयात जिसमें सदका खैरात की बात है उसका असर कम करने के लिए नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को भी फ़कीर और इस तरह की बातें कहने लग गए कि ये मुसलमान जो है ये ऐसा दीन रखते हैं। तो आज भी बात कम नहीं, लोग अक्सर कहते हैं कहीं भी बात हो ना, मिसाल है दीन का कोई काम हो तो लोग कहते हैं फलां बड़े अमीर लोग हैं, वहाँ उनसे बात करेंगे, देखना लोग बहुत स्पॉन्सर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेके आज तक ये वर्क ही फाड़ा हुआ है कि अमीरों पे नज़रें रखी जाएं, पैसे वालों पे नज़र रखी जाएं। कभी एक जगह ऐसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा वहाँ जाइए, आपको पता है आपकी क्लास में कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, ये वो है। तो मैंने उनको कहा कि मेरा तजुर्बा ये है कि पैसे वाले नहीं दिल वाले खर्च करते हैं। हमने तो ये देखा है कि गरीब लोग ज़्यादा दिल खोल के खर्च करते हैं, पैसा जितना बढ़ता है उतनी उसकी मोहब्बत भी बढ़ती है। तो ना अमीर की बात है ना गरीब की, इस्लाम में सारी मिसालें मौजूद हैं। उस्मान गनी को देखिए, करोड़पति थे, 9 दफ़ा उठ के 100-100 ऊँट माल से भरे हुए दे रहे हैं। इसके बरक्स वो अकील नाम का सहाबी जो एक मुट्ठी भर खजूरें सारी रात पानी निकाल कर लेकर आए तो वो भी ले ली। तो इस्लाम में ना अमीरी बुरी है ना गुर्बत अच्छी है, या गुर्बत बुरी नहीं तो अमीरी अच्छी नहीं है। असल बात है कि आप उस माल के साथ करते क्या, और जिस चीज़ में आपका अपना दिल लग जाता है ना वहाँ पैसा लगाना मुश्किल नहीं लगता। आप खुद देखिए, 10,000 का सोफ़ा नहीं लोग ले आते, क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सोफे की वैल्यू है, रखेंगे अच्छा लगेगा, तो वो 10,000 तो नहीं चुभे ना, लेकिन बाज़ दफ़ा 200 रुपये की भी चीज़ मुश्किल लगेगी। तो असल ये बात जो मुझे लगता है इस बात के एंड पे खुलासा कि हमें लोगों को बजाय इसके कि उनसे पैसा मांगे, दीन का काम उनकी कॉज बना दें, वो लेकर फिरे कि लोगों हमारा माल लो और दीन के कामों में लगाओ, ये माल इस्लाम में लगेगा तो हमारा फायदा। ये सोच जब दीन की तरफ से जाएगी तो लोग तो देने को तैयार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे दीन को कभी भी माल की कमी नहीं होती, ये याद रखिए। नबी सल्लम को छोड़ दीजिए, उस दौर की बात है। आज देखिए आपको अल्लाह ले जाए हरम में, मक्का में, मदीना में, गए होंगे आप लोग कभी, आपने वहाँ डोनेशन बॉक्सेस देखे, वहाँ चंदों की अपीलें देखी। आप इमेजिन तो करें अगर हर जुम्मे में इमाम सुदेश साहब एक अपील कर दे, एक चंदा कर दें, खाना काबा की एक्सटेंशन हो रही है हिस्सा डालें, मेरे लिए अरबों डॉलर जमा हो जाए वहाँ, अरबों डॉलर, क्योंकि लाखों तो लोग वहाँ होते हैं। कभी मैंने तो नहीं आज तक सुना। बस ये इस्लाम का मिजाज है, काम कीजिए, अपने हिस्से का काम करें। पैसे वाले खुद ही आके आपसे पूछते हैं कि बताओ हम अपना हिस्सा कहाँ डालें। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मैं नबी सल्लम का ये खूबसूरत रूप अपनाने वाला बना दें। यहाँ ये टॉपिक पूरा हुआ। सुबहानकल्लाहुम्मा वबिहम्दी का अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।